من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكمال كشفت دجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز علماء کرام، جناب علامہ مرتضیٰ زیدی صاحب، مولانا منور نقوی صاحب، مولانا مبشر صاحب اور دیگر معززین کرام، خاص طور پر واجب الاحترام مائیں اور بہنیں، ہمارے نوجوان ساتھی، اس عظیم الشان اس محفل پر، اس کے انعقاد پر آپ کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور خداوند کریم سے دعا گو ہوں کہ یہ انشاءاللہ آزادی القدس کی راہ میں پیش خیمہ ثابت ہوں، اور کل بروز قیامت جب ہم اپنے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوں تو ہم بتا سکیں کہ یا رسول اللہ، یہاں پر جو طلبہ اور طالبات ہیں ان کی میں چاہتا ہوں کہ معلومات میں اضافے کے لیے یا ان کی معلومات تک یہ باتیں پہنچانے کے لیے میں یہ کوشش کروں، علماء اور دانشور حضرات تو ان باتوں سے پہلے ہی واقف ہیں، اس وقت جو مسئلہ فلسطین کی صورتحال ہے، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں آپ کے سامنے، اس سے آگے کیا ہے اس وقت جو ہو رہا ہے، جو درپیش مسائل ہیں وہ کیا ہے؟ 1-7 اکتوبر کو سرزمین فلسطین سے، غزہ سے طوفان اقصا آپریشن شروع ہوا، اور یہ طوفان اقصا آج پوری دنیا کے اندر جاری ہے. ایک طوفان اقصا جو سرزمین فلسطین پر ہو رہا ہے، ایک طوفان اقصا وہ ہے جو فلسطین کی سرحدوں کو کراس کر کر دنیا بھر کے ملکوں میں، عواموں کے دلوں میں پہنچ چکا ہے. ایک جنگ ہمارے فلسطینی بھائی لڑ رہے ہیں جو مسلح جد و جہد کر رہے ہیں، اور ایک جنگ ہے جو آپ کو اور مجھے، ہم سب کو لڑنی ہے، جو ہمیں لڑنی ہے. اس جنگ کے بارے میں آپ سے بات کروں گا یہاں پر. اس وقت سوشل میڈیا پر یا پوری دنیا میں، سب سے پہلے جو 7 اکتوبر کے بعد غاصب صہیونی حکومت اسرائیل نے جو نقطہ اٹھایا، جو اس آپریشن کی کامیابیوں کو چھپانے کی کوشش کی، اس میں انہوں نے پہلا سوال یہ اٹھانا شروع کیا کہ یہ فلسطینیوں کو کیا ضرورت تھی، حماس کے لوگوں کو کیا ضرورت تھی، کیوں انہوں نے یہ حملہ کیا. اس کا جواز نام نہاد دانشوروں نے، اسکالرز نے، نام نہاد صحافیوں نے، یا آپ یوں کہیے کہ ہمارے اندر چھپی ہوئی کالی بھیڑوں نے اس طرح سے دنیا کے اندر اٹھانا شروع کیا، اور یہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ جو غزہ میں ظلم اور جارحیت ہو رہی ہے، یہ شاید ان فلسطینیوں کے اس جرم کی وجہ سے ہے کہ جو انہوں نے غاصب اسرائیل پر 7 اکتوبر کو کیا ہے. ان کو مجرم بنانا شروع کر دیا، ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا وار شروع کر دی گئی، ان کے اس مقصد کو فیل کرنے کی کوشش شروع کر دی گئی، اور یہ کوشش پاکستان میں بھی کی جا رہی ہے. میں دنیا کی بات نہیں کروں گا، میں صرف آپ کو پاکستان کی بات بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر یہ بیٹھی ہوئی کالی بھیڑیں کس طرح سے اس اثر کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. میں یہ کہتا ہوں اور ان سب کے لیے یہ جواب ہے ہمارا کہ یہ جو قبضہ ہے، یہ فلسطین پر 75 سالہ غاصبانہ تسلط ہے. یہ جو فلسطینی بھائیوں نے مزاحمت شروع کی ہے، یہ کوئی 1-2-3-4 دن کی بات نہیں ہے، 100 سالہ تاریخ ہے اس مزاحمت کی. یہ پتھر سے شروع ہو کر غلیلوں پر آئی، غلیلوں سے آگے نکل کر
خنجروں پر آ گئی، خنجروں سے نکل کر بندوقوں تک آئی، بندوقوں سے نکل کر راکٹ، میزائلوں اور ڈرون ٹیکنالوجی تک آ چکی ہے. نہ صرف یہ ٹیکنالوجی بلکہ دشمن کے ڈرونز کو انٹرسپٹ کرنے کی ٹیکنالوجی تک آ چکی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مزاحمت ہے، یہ جو 7 اکتوبر کا طوفان الاقصی آپریشن ہے، یہ کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ یہ ایک جوابی کاروائی ہے، یہ ایک ریسپانس ہے ان 75 سالہ مظالم کا، ان 75 سالہ غاصبانہ تسلط کا، جارحیت کا، ظلم کا، تشدد کا، دہشت گردی کا. یہ وہ جواب ہے جس نے آج غاصب سے انہیں حکومت کو گھٹنوں پر بٹھا دیا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ آپریشن فلسطینی بھائیوں نے اس کی 2 سال پہلے سے اس کی تیاری کرنا شروع کی، یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اچانک سے ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2021 میں جنگ ہوئی تھی مارکہ سیف القدس، اس سیف القدس کے بعد غاصب صہیونی حکومت نے یہ پلان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم غزہ کو خالی کر دیں گے، غزہ کے اوپر ایک اتنا میسو اٹیک کریں گے کہ غزہ کے پورے لوگوں کو اٹھا کر یہاں سے باہر پھینکیں گے۔ کہاں بھیجنے کا منصوبہ تھا؟ کچھ لوگوں کو جارڈن بھیجنا چاہتے تھے یہ، کچھ باقی جو بچے لوگ تھے یہ ان کو صحرا سینا میں پھینک دینا چاہتے تھے، غزہ کو خالی کرنا چاہتے تھے، پورے غزہ پہ اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور آپ نے یہ 23 ستمبر کو دیکھا ہوگا کہ جب یہ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کا دہشت گرد وزیر اعظم نتن یاہو اقوام متحدہ کی اسمبلی کے اندر آیا تو اس نے ایک نقشہ اٹھا کر دکھایا جس کے اندر فلسطین کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ انہوں نے یہ پلان کرنا تھا، وہ 2 سال سے یہ منصوبہ بندی کر رہے تھے، اسی طرح فلسطینی بھائی بھی 2 سال سے اس کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ان کی پہلی کامیابی، میں اس مظلومیت اور اس چیز کے اوپر کے جو وہاں پر ہو رہی ہے اس سے انکار نہیں کرتا، وہ دردناک ہے، وہ واقعاً ہمارے دل خون کے آنسو روتے ہیں اس مصیبت کے اوپر، لیکن یہ جو قیمتی ترین قربانی جو دی جا رہی ہے غزہ کی سرزمین پر، یہ بالآخر ایک قیمتی ہدف کی خاطر ہے، یہ ایک بڑے ہدف کی خاطر ہے۔ اور بڑا ہدف کیا ہے؟ وہ فلسطین کی آزادی ہے، وہ القدس شریف کی بازیابی ہے، وہ اسرائیل کی نابودی ہے۔ تو اس کے لیے اتنی ہی بڑی قربانی چاہیے جو غزہ کے لوگ اس وقت دے رہے ہیں، اور ہم اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لہذا یہ جو 2 سال سے پلاننگ تھی، پہلی کامیابی آپ دیکھیے کہ فلسطینی مزاحمت نے کیا حاصل کی، غاصب اسرائیل کی انٹیلیجنس سسٹم میں داخل ہوئے، ان کے اندر سے ان کی ٹیبل پہ ہونے والے اس پلان کو جو غزہ کے خلاف تھا، جو فلسطین کے خلاف تھا، اس کو حاصل کیا۔ اس کی جانکاری لینے کے بعد اتنا ہی بڑا ایک پلان بنایا گیا، اتنی ہی بڑی ایک منصوبہ بندی کی گئی جتنی بڑی منصوبہ بندی دشمن کر رہا تھا۔ اور اس منصوبہ بندی کا دوسری کامیابی، اس کو اتنا سیکرٹ رکھا گیا، اتنا خفیہ رکھا گیا کہ شاید دنیا میں کسی اور کو معلوم نہیں تھا پلان بنانے والوں کے علاوہ۔ دنیا کے بڑے حکمران ایجنسیز، دنیا کے خفیہ ادارے اور خود فلسطین کے اندر دوسرے گروہ، وہ بھی شاید اس بات سے آگاہ نہ تھے کہ یہ کیا پلاننگ ہے۔ اس کا اشارہ میں آپ کو صرف معلومات کے لیے بتا دیتا ہوں کہ گزشتہ 6 مہینوں میں جہاد اسلامی فلسطین، حماس اور حزب اللہ، تینوں کے اہم کمانڈرز لبنان کے اندر مستقل ایک دوسرے سے ملتے رہے۔ 2 مرتبہ 3 مہینے میں یہ خبر آئی کہ جہاد اسلامی کے رہنما سید حسن نصر اللہ سے ملے، پھر ایک خبر آئی کہ حماس کے رہنما سید حسن نصر اللہ سے ملے، پھر ایک خبر اور ایک تصویر سامنے آئی جس میں دیکھا گیا کہ جہاد اسلامی، حماس اور حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ تینوں ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ اشارے بتاتے ہیں کہ یہ پلاننگ بہت عرصے سے جاری تھی، یہ کام ہونے جا رہا تھا۔ اور یہ کیوں ہونے جا رہا تھا؟ کہ اگر یہ کام نہ کرتے، اگر یہ اسرائیل کے ساتھ یہ طوفان اقصی آپریشن نہ کرتے تو اس کے 2 نقصانات تھے۔ پہلا نقصان، جو یہ قتل و غارت گری آج ہو رہی ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہوتی، اور جب اچانک ہوتی تو یقیناً غزہ کے لوگوں کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا جاتا، ان کو یہاں سے بھگایا جاتا، یہ کوشش ہوتی کہ غزہ خالی ہو جائے، اور شاید اگر خدا نہ خواستہ یہ ریزسٹنس تیار نہ ہوتی تو اس کا ریزلٹ کیا ہوتا کہ غزہ بھی ہاتھ سے جاتا اور اتنی بڑی قربانیاں بھی جاتی۔ لیکن اس 7 اکتوبر کے آپریشن نے کیا کیا؟ اس نے اسرائیل کو پیچھے دھکیل دیا، اس نے ایک نقصان برداشت کیا، دوسرے نقصان کو اس نے بدل دیا۔ ایک نقصان جو اس وقت جانی نقصان ہو رہا ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے، دوسرا جو ہونا تھا انہوں نے اسرائیل کو ریورس کر دیا۔ 20 سے 22 لاکھ عوام مصر نے راستے بند کیے ہوئے ہیں، مغربی کنارے کے اوپر غزہ کی پٹی پر 10,000 اسرائیلی فوجی تعینات تھے۔ 7 اکتوبر سے پہلے 10,000 صہیونی فوجی وہاں پر تعینات تھے، جن کا کام یہ تھا کہ غزہ سے مغربی کنارے میں کسی کو مت آنے دو، ان کو محصور کر کے رکھو، ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء فراہم نہ ہو، ان پر زندگی تنگ کر دو۔ اور یہ آج سے نہیں تھا، یہ 2007 کے بعد سے آج تک مسلسل 7 اکتوبر تک
इनका मुहासरा था। इस ऑपरेशन ने क्या कामयाबी हासिल की, आज जब हम और आप यहां पर बात कर रहे हैं वो 10,000 फौजी पसपा हो चुके हैं, वहां पर एक भी फौजी उस पट्टी पर उस मुहासरे के ऊपर नहीं है। उस मुहासरे को फलस्तीनी मुदाहमत ने तोड़ दिया है। उस मुहासरे से आगे निकलकर 4 किलोमीटर आगे जाकर सैदरूत नामी जो इलाका है, जो शहर है, जो सेहूनी बस्ती बन गई थी, वहां पर मुजाहिदीन का आज कंट्रोल है। अशदोद जो 11 किलोमीटर के ऊपर है उस पर हमारे फलस्तीनी मुजाहिदों का कंट्रोल है, इस कलान के ऊपर कंट्रोल है। और इससे बढ़कर आप तो ये खबरें सुन रहे हैं, और आपने 7 अक्टूबर को ये खबरें सुनी है कि 5,000 रॉकेट्स गासिब सेहूनी हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों पर फायर किए गए। ये कोई मामूली बात नहीं है। दूसरी बात आपको बताता हूं, फौजी नाकामी आपके सामने पेश की, इंटेलिजेंस नाकामी के बारे में आपके सामने बात हुई। तीसरी बात, ये गासिब सेहूनी हुकूमत जो दुनिया के सामने बड़ी ताकतवर बनती है, आज खुद इस बात का एतराफ कर रही है कि 3,000 हमारे सेहूनी आबादकार 7 अक्टूबर के तूफान अक्सा ऑपरेशन में मारे गए। अभी कल ही मैं इससे मुतसिल ये बात है, इसीलिए यहां इसको जोड़ रहा हूं, सैयद हसन नसरुल्ला ने एक नया जाविया पेश कर दिया है। उन्होंने एक दकीक मालूमात की बुनियाद पर क्या बताया है, उन्होंने कहा कि जब 7 अक्टूबर को तूफान अक्सा हो रहा था, इन गासिब सेहूनी फोर्सेज ने अपनी आबादियों के अंदर अपने सेहूनी आबादकारों को कत्ल करना शुरू किया, ताकि इसका इल्जाम हमास पर लगाएं, अल कसाम पर लगाएं, जहाद इस्लामी पर लगाएं कि इन्होंने सिविलियन को कत्ल किया है और अपने लिए एक नरम गोशा तैयार करें दुनिया में। लेकिन सैयद हसन नसरुल्ला ने कल ये बता दिया है कि इनको कत्ल करने वाले ये गासिब सेहूनी फौजी खुद थे। अब उन्होंने कहा है कि दुनिया तहकीक करे, दुनिया बताए कि ये क्यों हुआ। तो इसराइल इसको आज अभी तक 24 घंटे गुजर चुके हैं, उस खिताब को मैंने मुसलसल उनकी वेबसाइट्स को मॉनिटर किया है, उनके चैनल को बराए रास्त मॉनिटर किया है सुबह से, अभी तक इस बात के ऊपर वो कोई डिनायल देने से कासिर हैं, वो ये कहने से कासिर हैं इसराइली कि नहीं ये झूठ था, ऐसा नहीं था। क्योंकि ये जो हसन नसरुल्ला साहब ने बात की है ये कोई अखबारी बात नहीं है, ये बहुत ही दकीक इंटेलिजेंस बेस्ड एक वो मालूमात है जो सरजमीन फलस्तीन से उनके पास पहुंची है। ये बहुत बड़ी इसराइल के लिए शिकस्त है। तीसरी बात, चौथी बात, 10 लाख सेहूनी आबादकार, 10 लाख सेहूनी आबादकार गासिब रियासत को छोड़कर भाग चुके हैं 7 अक्टूबर से आज तक। 5 लाख अफ्रीकी यहूदी जिनको अफ्रीका से माइग्रेट करवाकर इन्होंने फलस्तीन पर कब्जा करने के लिए यहां पर लाके बिठाया था, एथोपिया से और सूडान से, ये 5 लाख अफ्रीकी जो सेहूनी हैं, सेहूनी रियासत की शहरियत ले चुके हैं, अब ये नेतन्याहू के सर का दर्द बन चुके हैं, क्योंकि ये वापस नहीं जा सकते और इनको मौत का डर है। अब इनको सहरा में ले जाकर कैंपों में बिठाया गया है। अगर गजा में कैंप लगे हैं तो मैं आपको बता दूं कि गासिब सेहूनी इलाकों के अंदर भी कैंप लग चुके हैं, इनके लिए भी अमान नहीं है, ये इनकी जिंदगी भी तंग हो गई है। ये जिस फलसफे के साथ इसराइल बनाने 1948 में आए थे कि इधर अमन की जगह होगी, दुनिया भर के सेहूनी यहां पर अमन से बैठेंगे, आज उनका अमन तबाह हो गया है, आज वो वापसी की राहें इख्तियार कर रहे हैं। पांचवी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, गासिब सेहूनी हुकूमत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बैरी जहाज किराए पे ले रही है, कार्गो प्लेन्स किराए पे ले रही है, फ्लाइट्स किराए पे मंगा रही है। क्यों? अब उनको चाहते हैं कि उनके लोग जो ये जो बिनगोरियन एयरपोर्ट के ऊपर एक लोड है, अवामों का रश है, वो भाग रहे हैं यहां से, यूरोप जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, अब उनको भेजना है, ट्रांसपोर्ट का मसला आ गया है, वहां वो परेशान है, हुकूमत के लिए परेशानी है। छठी बात, इसराइल के अंदर रहने वाली गासिब सेहूनी रियासत में रहने वाली खवातीन, सेहूनी खवातीन निकलकर रोडों पर आ चुकी हैं, उन्होंने मुजाहरे करना शुरू कर दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करना शुरू कर दी हैं, वो नेतन्याहू के ऊपर लानतान कर रही हैं, वो कहती हैं कि जो इसराइली फौजी, जो हमारे बेटे, हमारे शौहर, हमारे भाई गजा के मुजाहिदीन ने गिरफ्तार किए हैं 7 अक्टूबर को, उनको कब लाया जाएगा। अब इसराइल के लिए एक के बाद एक मुसीबत बनती चली जा रही है। और उससे बढ़कर एक और बात, 1 महीना होने को है, एक कोई कामयाबी आज के दिन तक इसराइल फलस्तीन के अंदर हासिल नहीं कर सका, गजा के अंदर हासिल नहीं कर सका। ये जो बमबारी है, ये जो दहशतगर्दी है, ये खुद इस बात का सबूत है कि ये शिकस्त खा चुके हैं, ये हार चुके हैं, ये जलील और रुसवा हो चुके हैं, इनके पास कोई चारा नहीं है, लिहाजा ये अब मासूम लोगों पर बमबारी करके ये एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, ये दुनिया के साथ एक प्रेशर बनाने की कोशिश में है कि ये सारे का सारा प्रेशर फलस्तीनी मुजाहिदीन पर आ जाए, फलस्तीनी मुजाहमत के ऊपर आ जाए, लेकिन ये उसमें भी नाकाम होते चले जा रहे हैं। एक और बड़ा काम आप देखेंगे, ये मसला है फलस्तीन, इन हालात में 7 अक्टूबर से पहले इसके लिए साजिश हो रही थी, इसको फरामोश किया जा रहा था। आपने यकीनन सुना है डील ऑफ द सेंचुरी, अब्राहमिक अकॉर्ड, ये सारे मंसूबे लाए जा रहे थे कि फलस्तीन के मसले को खत्म कर दो, फरामोश कर दो, अब कोई फलस्तीन की बात इस दुनिया में ना हो। इस्लामी दुनिया का बड़ा मुल्क जिसको इस्लामी मुकद्दसात की वजह से अहमियत हासिल है, मक्का मुकर्रमा की वजह से, मदीना मुनव्वरा की वजह से, सऊदी अरब की हुकूमत इसराइल से ताल्लुकात बनाने जा रही थी, अनकरीब था कि वो ऐलान करते, इस बरकत ने, तूफान अक्सा की बरकत ने उनको एक दफा फिर बैकफुट पे ले जाने को मजबूर किया। अब फिर वहां से खबरें आ रही हैं, अब फिर अमरीकी उनके साथ लगे हैं कि भाई दोबारा से बातचीत करो, दोबारा वापस आ जाओ लाइन पर। अब ये देखना है कि वो क्या फैसला करेंगे या क्या नहीं करेंगे, ये अगली बात है, लेकिन ये तूफान अक्सा की एक बड़ी कामयाबी थी जिसने अरब हुकूमतों को बैकफुट पर जाने पर मजबूर किया। और इस वक्त जो अरब हुकूमतों के लिए बड़ा मसला खड़ा हो गया है इस फलस्तीनी मुजाहमत की वजह से, अरब दुनिया के अवाम सड़कों पे निकल आए हैं, सड़कों पे निकलकर जिस जिस अरब और मुसलमान मुल्क में इसराइली सफीर बैठा है उनका यह मुतालबा है, वो कहते हैं कि इसराइली सफीर को निकालो, यहां से इसराइली सफीर को निकालो। ये वो मुतालबा अवामी है जो फलस्तीन के कॉज को बहुत ऊपर लेकर जा रहा है। और फिर आपने खुद ये सारी सोशल मीडिया पर देख लिया है कि जो कुछ यूरोप के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, अफ्रीका के अंदर हो रहे हैं, लातिनी अमेरिका के अंदर हो रहे हैं, एशिया के मुल्कों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो ये अवामी एक इनकलाब है, इसने फलस्तीन के मसले को दुनिया का सबसे बड़ा और नंबर वन मसला दोबारा से बना दिया है, जो एक बहुत बड़ी कामयाबियों में से एक बड़ी कामयाबी है। इससे आगे मुनाफिकीन का जहूर हो गया है, ये पता चल गया है इस जंग के बाद दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, और इनके दरमियान में मुनाफिकीन कौन है। वो मुनाफिकीन जो आज के दिन तक गासिब से हुनी रियासत को तेल की सप्लाई कर रहे हैं, गैस की सप्लाई कर रहे हैं, और ये सारे के सारे जराए हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, गजा के ऊपर बमबारी में इस्तेमाल होने वाला जहाजों में तेल, टैंकों में तेल, ये सारे का सारा जो सप्लाई है ये मुसलमान मुल्कों, मुसलमान ममालिक उसको दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी खयानत है। इसके जरिए इन मुनाफिकीन का जहूर सामने आ रहा है। हम हर जगह पे ये बात करते हैं, यहां भी कर रहे हैं कि इनको ये ताल्लुकात खत्म करने चाहिए, ये सप्लाई बंद करनी चाहिए और कम अज कम फलस्तीन के साथ खड़े होना चाहिए। इस तरह की और बहुत सारी कामयाबियां हैं जो मैं घंटों आपके साथ बात कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि वक्त कम है और भी गुफ्तगू होनी है, मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि मजलूमियत जो उजागर हुई है और ये सारा एक बहुत बड़ी एक कामयाबी है। और फिर आप पाकिस्तान के अंदर जो ये सब काम आप लोग कर रहे हैं ये यकीनन बहुत ही काबिले सताइश है। गुज़िश्ता दिनों फलस्तीनी भाइयों ने फोन पर रब्ता किया, बातचीत होती रही जब हालात और वाकयात के बारे में, तो आप यकीन कीजिए कि वो ये कहते थे कि पाकिस्तान की सड़कों पर आवाम को देखकर हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोई अगर हमारे पीछे खड़ा है तो ये पाकिस्तान के अवाम हैं जो हमारे लिए सड़कों पर मौजूद हैं और घरों में नहीं बैठ रहे, और उससे आगे से आगे ये मुसलसल हमारी हिमायत में खड़े हैं। वो इस चीज़ को बड़ी खराज अकीदत की नज़र से देखते हैं, तहसीन की नज़र से देखते हैं। इसी तरह एक और बात, कुछ मुफ्तियान ने फलस्तीनियों के खिलाफ फतवे देना शुरू कर दिए हैं, एक फिरका वारियत की आग को भड़काने की कोशिश शुरू कर दी गई है। वो कहते हैं जी फलस्तीन की बात ना करें, फलस्तीनियों ने क्योंकि गलती की है उनको हमला नहीं करना, जो मैंने पहले बात की। कुछ ये मुफ्तियों को सामने ले आए हैं जिन्होंने इस तरह की बात की है, ज्यादा वो अहमियत के हामिल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कोई भी आवाज किसी भी कॉर्नर से आए जो मायूसी का दर्स दे रही हो, जो फकत ये बताए कि मुसल्लों पे बैठ के दुआएं करते रहो, नमाजें पढ़ते रहो, फलस्तीन आजाद हो जाएगा, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं एक तालिब इल्म हूं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मुसल्लों पर बैठने से ही फलस्तीन आजाद होगा। ये मायूस करने वाले लोग हैं। ये जहाद से दूर करने वाले लोग हैं, ये आपको जद्दोजहद से दूर करने वाले लोग हैं, ये घरों से ना निकलने की तरगीब देने वाले लोग हैं। इनकी बहुत पहले शनाख्त करनी है, इनको फौरन काउंटर करना है, इनको फौरन जवाब दे देना है कि नहीं भाई, हम नमाज भी पढ़ेंगे, जिस तरह नमाज पढ़ना वाजिब है, ये फलस्तीन के मजलूमों की हिमायत करना भी वाजिब है, हम घरों से निकल कर भी करेंगे और जहां बन पड़ेगा वहां पर करेंगे। दूसरा जो अहम मसला है, गजा के लोगों का मसला है। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि गजा के लोग गजा से भाग जाना चाहते हैं, गजा को खाली करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गजा के लोग एक फतह के एहसास के साथ वहां बैठे हैं, वो इस एहसास के साथ हैं कि हम गजा को रीबिल्ड कर लेंगे। उनको ये पता है कि 75 साल से हम ये कुर्बानियां दे रहे हैं और इन कुर्बानियों का हदफ भी वो अच्छी तरह जानते हैं। जैसा मैंने पहले बयान किया कि जितनी बड़ी कुर्बानी है उतना ही बड़ा हदफ है, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो नहीं भागना चाहते, बल्कि वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो रिफ्यूजीज हैं, जो पनाहगुजीन फलस्तीनी हैं, उन्होंने फलस्तीन की मकबूदा सरहदों पर मार्च करना शुरू कर दिया है। वो फलस्तीनी सरहदों पर जमा होना शुरू हो गए हैं। उनका ये नारा है कि हमें हक के वापसी दो, हम फलस्तीन के अंदर वापस आए, ये हमारा घर है। मैं रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर उन फलस्तीनी माओं से मिला हूं जिनकी उम्र 95 साल है, 90 साल है, उनके पास अपने घरों की चाबियां हैं। वो आज इस उम्मीद के साथ हैं कि वो अपने घरों को जाना चाहते हैं। मैं एक वाक्य आपके सामने अर्ज करूं कि जब 1948 में गासिब से उनी हुकूमत का कयाम अमल में लाया जा रहा था, फलस्तीनियों को जिलावतन किया जा रहा था, जबरी तौर पर निकाला जा रहा था, तो वो जब अपने घरों को ताला लगा रहे थे, जिन घरों में मवेशी थे, मुर्गियां थी, बकरियां थी, जानवर थे, उन्होंने अपने मवेशियों को एक हफ्ते का चारा एडवांस डाला था। और वो चारा एक हफ्ते का डालकर उनकी उम्मीद ये थी कि इस एक हफ्ते के अंदर हमारे अरब भाई बहुत जल्द हमें रिस्टोर कर देंगे, हमें अपने वतन में ले आएंगे। लेकिन आज भी उनका एहसास वही है, वो कामयाबी के एहसास के साथ हैं, वो मायूस नहीं है। दूसरी अहम बात जो इस वक्त है, जो बात करने की है, वो बहुत सारी बातों को मैं स्किप करके, जो खास तौर पर ये बात है, इसराइल ने इस जंग को हार चुका है, महाज के ऊपर वो हार गया है, हमास के सामने घुटने टेक चुका है, जनूबी लुबनान के अंदर हिजबुल्ला के भाइयों ने 8 अक्टूबर से लेकर आज तक 175 से ज्यादा सहूनी फौजियों को जहन्नुम में भेज दिया है, कई दर्जन उनके टैंक्स तबाह कर दिए हैं, कई चेक पोस्टों के ऊपर अब इनका हिजबुल्ला का कंट्रोल है। परसों की बात है, सैयद हसन नसरुल्ला के खिताब से 24 घंटे पहले 19 फौजी ठिकानों पर बैक वक्त हिजबुल्ला के जवानों ने अटैक किया और बहुत ही कामयाब किस्म का ऑपरेशन करने के बाद खबर जो आई तो इसराइल ने बड़ी देर से उसको तस्लीम किया है कि हमारे कोई 70 फौजी जख्मी हुए हैं, जबकि हिजबुल्ला का कहना था कि 40 से ज्यादा फौजी मारे गए हैं। ये वो नुकसान है जो 7 अक्टूबर के बाद से जनूबी लुबनान की सरहद से शुरू हो चुका है इसराइल के लिए, और इसराइल के लिए अमान नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा था, ये एक कोऑपरेटेड, एक कोऑर्डिनेटेड और ज्वाइंट ऑपरेशन था। जब 7 अक्टूबर को वहां शुरू हुआ, 8 अक्टूबर को हिजबुल्ला को क्या मसला था? खामोश थे बॉर्डर्स, कई सालों से खामोश थे। इसराइल अपनी तरफ था, मकबूजा फलस्तीन में था, लुबनानी अपनी तरफ थे, लेकिन 8 अक्टूबर को यह क्यों किया गया? इसका जवाब खुद कल सैयद हसन नसरुल्ला साहब ने दिया। उन्होंने बताया कि हमने इनको इधर इंगेज किया, 1/3 इनकी जो आर्मर्ड फोर्स है, जो आर्मी है, जो इनका असला है, जो इनका साजो सामान है, हमने इनको मजबूर किया कि ये अपना असला साजो सामान, अपनी फौज जनूबी लुबनान के इस शुमाल फलस्तीन के बॉर्डर पर डाइवर्ट करें। अगर हम ये ना करते तो ये सारी ताकत ये गजा के खिलाफ इस्तेमाल होती और इससे ज्यादा बड़ी जंग वहां पर होती, और इसका मकसद हमास को स्ट्रेंथन करना था। इस कार्रवाई का मकसद जो जनूबी लुबनान से है, उसका बुनियादी मकसद उधर हमास को सिक्योर करना था कि हमास को टाइम मिले, हमास को मौका मिले, अल कसाम और अल कुस ब्रिगेड को यह मौका मिले कि वो वहां पर भरपूर तरीके से गासिब सेउनी फौजियों से लड़े। तो ये वो एक ज्वाइंट यूनिटी, अखुवत और एक कॉपरेशन का एक अजीमुशान मिसाल है कि जिसके अंदर इस्लामी मुदाहमत लुबनान में, फलस्तीन में, यमन में, इराक में, शाम में, हर जगह आपस में मुत्तहिद है। और परसों ही की बात है कि आप देखिए कि एक ही वक्त में तीन तरफ से हमले शुरू हो गए। गजा के अंदर से मिसाइल मारना शुरू किए गए, लुबनान के अंदर से 19 मकामात को निशाना बनाना शुरू किया गया, उसी वक्त यमन के अंसारुल्ला और यमनी फौज के तर्जुमान सामने आए और उन्होंने बताया कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं इलात के ऊपर जो बंदरगाह है, और ये इलात वो शहर है जहां पर दुनिया भर से इनके पास बड़े बड़े टूरिस्ट आते हैं, बड़ा यहां पर इकोनॉमिकली बहुत यहां पर फायदा होता है इनको। उस एक अहम तरीन इलाके को यमन से निशाना बनाया गया। आप अभी गूगल करके देखिए, 2100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर है। अब ये सवाल है पूरी दुनिया के ऊपर, क्या आया यमनियों ने यमन से मिसाइल फायर किया, क्या यमनियों ने सऊदी अरब में आकर ये हमला किया, या यमन के लोगों ने कोई ऐसा ऑपरेशन अंजाम दिया है कि जो समंदर के अंदर से किसी ऐसे मकाम से अंजाम दिया गया कि जिस पर इस वक्त अमेरिका भी दंग रह गया है, इसराइल भी परेशान है, और अगले ही दिन अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस और सऊदी वजीर दिफा दोनों मिले हैं और दोनों ने यह बात की है कि सऊदी अरब के अंदर अमेरिका का एक जदीद डिफेंस सिस्टम लगाना है। क्यों लगाना है? ताकि ये जो यमन के मिसाइल हैं ये सऊदी हुकूमत को निशाना ना बना सकें, ये ड्रोन वहां ना जा सकें। लेकिन आप देखें, अगले ही दिन यमन के भाइयों ने फिर दोबारा एक काम किया है। लेकिन इन सारी बातों में हमें क्या सबक मिल रहा है? ये वो वाकयात हैं जो हमें उस निशानी की तरफ लेकर जा रहे हैं जिसके बारे में हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है, जिसके बारे में इमाम खामनाई हफजुल्लाह ने हमें बताया है, और जो सैयद हसन नसरुल्लाह हमेशा बताते हैं कि यही वो नस्ल है जो नस्ल इस जमाने में परवान चढ़ रही है। इसी नस्ल ने आजादी फलस्तीन को, आजादी अलकुद्स शरीफ को देखना है। ये वो निशानियां हैं जो खुदा ने बरकतें हम लोगों को दिखाई हैं। अब हमारे इन बरकतों को देखने के बाद कोई जिम्मेदारी है कि जो हम अंजाम दें। इस वक्त जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मेरे बहनों और भाइयों, इसराइल ने क्या किया है, मीडिया एजेंसीज के जरिए पूरी दुनिया के मीडिया हाउसेस को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड जारी कर दी है, क्योंकि इसराइल महाज पर शिकस्त खा गया है, जलील हो गया है, उसके पीछे आने वाला अमेरिका बर्बादी के दहाने पर है। दूसरी जंग अजीम के बाद, 1945 के बाद पहली मर्तबा मेडिटेरियन सी के ऊपर 11 मुल्कों के 50 जंगी बैरी जहाज खड़े हैं, ये उनके लिए खुद बहुत खतरनाक है। अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर, पेंटागन के अंदर अब ये सवाल उठ रहा है कि आया इसराइल की कमजोरी अमरीका के लिए नुकसानदेह हो जाए, ये जो अमरीकी फौजें वहां पहुंची हुई हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये पेंटागन में बहस हो रही है। वो कह रहे हैं कि इसराइल तो शिकस्त खा रहा है, ये तो कुछ अचीवमेंट नहीं कर रहा, ये तो अपना एक फौजी नहीं छुड़वा पा रहा, सिर्फ बमबारी कर रहा है, जिसकी वजह से यूरोप के अवाम, वेस्टर्न कंट्रीज के अवाम इसराइल के खिलाफ होते जा रहे हैं और फलस्तीनियों के साथ होते जा रहे हैं। अब इनके सरदर्द है, ये समझते हैं कि इसराइल की कमजोरी अमरीका को ले डूबेगी। उधर अमरीका कहता है कि भाई अब हमें क्या करना है, नेतन्याहू की हुकूमत को गिराना है। अब उन्होंने नया प्लान भी शुरू कर दिया है, उन्होंने इसराइल के अंदर अपोजिशन जमातों से मिलना शुरू किया है। अब आप देखिए कि ये दुश्मन आपस में किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ ये लड़ना शुरू हो गए हैं। अब एक दूसरे के गिरेबानों में इनके खुद के हाथ पहुंचना शुरू हो गए हैं, ये एक दूसरे के गिरेबान पकड़ना शुरू हो गए हैं। ये वो जिल्लत और रुसवाई है जो 7 अक्टूबर के तूफान अक्सा की वजह से इन गासिब दुश्मनों के हिस्से में आई है। और इसी वजह से सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि जो अमेरिका पे दबाव बनाना है वो बहुत जरूरी है, कि ये जाहिरियत को बंद करना अमेरिका की जिम्मेदारी है कि अमेरिका इसको बंद करे, और पूरी दुनिया के अवामों का ये वजीफा है कि वो इस वक्त अमेरिका पर दबाव बनाए। जो सोशल मीडिया के लिए, जो मीडिया हाउसेस के लिए इसराइल ने जो फंडिंग जारी की है, $8 मिलियन आज की रिपोर्ट है, उन्होंने यूट्यूब को सिर्फ एक काम के लिए दिए हैं कि इजरायली नैरेटिव को YouTube के ऊपर ऊपर कर दो, और फलस्तीनी नैरेटिव के ऊपर जो भी मवाद आता है उसको उठाकर थर्ड ग्रेड पे ले जाओ, ताकि वो लोगों तक ना जाए। क्यों ना जाए? क्योंकि अवाम उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, अवामों के अंदर एक राय आमा बन गई है, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन बन चुका है कि इसराइल गासिब है, इसराइल जाहरे है, दहशतगर्द है। तो लिहाजा पाकिस्तान में भी ये काम शुरू हो चुका है भाइयों और बहनों, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि इसको हमने रोकना है, हर महाज पे रोकना है, रैलियां, मुजाहरे, ये जलसे, सेमिनार, ये सारे काम करने हैं। इसके साथ साथ जो असल तूफान अक्सा है, वो मैदान जंग, वो यहां पर है कि इनके नेगेटिव इस प्रोपेगेंडे को भी हमने काउंटर करना है, इस पर वो नजर रखनी है। पाकिस्तान में भी मैं देख रहा हूं कि गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से बड़े बड़े नाम निहाद दानिश्वर स्कॉलर्स सोशल मीडिया पर बेबुनियाद और मनगढ़ंत सवालों को उठाकर फलस्तीनी कौज को फरामोश करने की कोशिश कर रहे हैं और इसराइल के हक में बातें करते हैं। हमें इन सारी चीजों पर जो है वो अपनी वो नजर रखनी है। मैं आपको आखिर में ये भी बता दूं कि ये इसराइल मुआशी तौर पर भी बहुत गिरावट का शिकार है। सिर्फ 9 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक के जो आदाद व शुमार हैं इसराइली इन्वेस्टमेंट एजेंसी ने जारी किए हैं, उन्होंने बताया है कि 17 अरब डॉलर का नुकसान 12 दिन के अंदर इसराइल को हुआ है। 20 अरब डॉलर का जंगी नुकसान हो चुका है, जो इनके टैंक तबाह हुए हैं, जो इनका असला जाया हुआ है, ये इस वक्त कोलैप्स कर चुके हैं। जरूरत इस बात की है कि ये अवामी बेदारी जारी रहे और इंशाल्लाह मुसल्ला जो जद्दोजहद है वो जारी और सारी है। इन्हीं कलमात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं और जो हमारे भाइयों ने जो ये प्रोग्राम तरतीब दिया है, हमारी बहनों ने, उन सबको हम खराज तहसीन पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद करीम हमारी इन कोशिशों को कबूल करे और हमें हक और बातिल के इस मार्के में खड़े रहने की तौफीक दे। आखिर में मैं कुरान मजीद की आयत पढ़कर कि जिसमें फरमाया गया है कि सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, आपने तर्जुमा सुन रखा है कि खुदावंद करीम अपने पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गया शब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। लेकिन इसी आयत का जो अगला जुमला है, मेरा फोकस वो जुमला है जिसमें कहा गया है कि अल्लज़ी बारकना हौलहू, और इसके अतराफ में हमने बरकतें रखी हैं। किसके अतराफ में? मस्जिद अक्सा के अतराफ में, ये फलस्तीन के ऊपर। अब ये जो हक और बातिल की बात है वो यही अल्लज़ी बारकना हौलहू है। जो फलस्तीन के साथ खड़ा है वो हक के साथ है, और जो फलस्तीन के खिलाफ बात करेगा इसका मतलब है वो बातिल पर है। और जैसा सैयद हसन नसरुल्ला ने कल कहा है कि जो भी इस वक्त फलस्तीन के खिलाफ जाता है उसे अपने इंसान होने पर, अपनी इंसानियत पर शक करना चाहिए, अपने ईमान पर शक करना चाहिए और अपने शरफ और करामत पर शक करना चाहिए। इन्हीं कलमात के साथ आप सबकी समातों का शुक्रिया। वक्त ज़्यादा ले लिया है, मुंतजमीन से भी माजरत, बहुत शुक्रिया।